आज हमारे परम प्यारे ब्रह्मा बाबा का दिवस है। हम सब उसी की संतान हैं। सिर्फ हमको ही भाग्य मिला है ब्रह्मा बाबा की संतान बनने का। लोगों ने तो हिस्ट्री सुनी है या पढ़ी है, या इनडायरेक्ट बाबा कहा करते थे कि इनडायरेक्ट तो हर एक ब्रह्मा की संतान है, जो समझे वो डायरेक्ट है, जो नहीं समझे वो भी है, परंतु हम सब तो ब्रह्मा की संतान है ही। तो आप लोगों ने शायद ब्रह्मा बाबा को ना देखा, आप में से तो किसी ने नहीं देखा ना, या देखा है? आपने देखा है, अच्छा। तो दुनिया वाले कहते हैं, परमात्मा कहता है मेरे समान बन जाओ, हैं? भगवान तो भगवान है, उसके समान कैसे बन जाएं? क्योंकि धरती पर तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हैं? तो परमात्मा को ये भी लोग गीत बने हुए हैं कि परमात्मा धरती पर आके देख, हैं? यहाँ क्या हाल है। तो जब बाबा कहता है कि बनाता शिव बाबा हमको सारे ईश्वरी गुण देके हैं, लेकिन हम ये न कह दें कि ये तो भगवान है, तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा जो हमारी और आपकी तरह शरीरधारी थे, हमारी और आपकी तरह इस दुनिया में रहते थे, हमारी और आपकी तरह ही उनका लास्ट जन्म था, हमारी और आपकी तरह ही वो ग्रस्त व्यवहार में थे, और हमारी और आपकी तरह ही उनके ऊपर इतने जन्मों का हिसाब किताब था, हैं? पूरा जो है द्वापर के आज से लेकर उनके ऊपर हिसाब किताब भी था। तो जब शिव बाबा आके ज्ञान देते हैं, तो अगर ब्रह्मा बाबा उसको कर सकता है तो कोई भी नहीं कह सकता मैं नहीं कर सकता, हैं? ब्रह्मा बाबा शरीर में था, शारीरिक रोग भी आएगा, ब्रह्मा बाबा धरती पर था, प्राकृतिक आपदा आएगी तो उस पर असर आएगा, और ब्रह्मा बाबा के इतने सारे बच्चे उनका भी संभाल करना है। इसलिए बाबा हमेशा कहता था कि बच्चे घबराओ नहीं, कोई भी माया की या प्रकृति की कोई भी समस्या आएगी सबसे पहले मेरे आगे आएगी, और जब मैं उसको क्रॉस कर लूंगा फिर आपके पास आएगी। इसलिए हमको बहुत बड़ी हिम्मत है कि अगर बाबा क्रॉस कर सकता है और उसको क्रॉस करके उसका जो होता है अनुभव हमको सुना सकता है कि इसलिए आई थी, आप सावधान रहना, तो कोई चीज डिफिकल्ट नहीं लगती। अब रह गई बात कि ब्रह्मा बाबा, उसको अपना बहुत नशा भी था कि बाबा ने मेरा रथ लिया है, हम लोगों को भी नशा है, बाबा ने हमको डायरेक्ट ज्ञान दिया है, लेकिन उस नशे को अंदर रख के स्व मान में रहकर दूसरों के साथ बाबा उनकी लेवल से बात करते थे। आपको पता है कि बाबा कहता है मैं गरीब नवाज हूं, तो बाबा के पास बड़े रॉयल लोग, बादशाह से लेकर राष्ट्रपतियों से लेकर साधारण गांव के भी आते थे। तो उसको बाबा उसी तरीके से जैसे माँ बाप झुककर अपने छोटे बच्चे को उठाते हैं उसी तरह से करते थे। और बाबा अनुभवी लौकिक तौर पर भी बहुत थे, भक्ति मार्ग में भी बहुत अनुभवी थे, और फिर शिव बाबा ने सोचकर उनका रथ लिया था। और बाबा व्यक्ति को एक नजर देख के, बस एक नजर देख के उसको सारा परख लेते थे, ये व्यक्ति कैसा है, बिल्कुल साधारण भी होगा उसका फ्यूचर देख के परख लेंगे। तो मैं आपको एक घटना पहले सुनाता हूं कि हमारा लौकिक परिवार में चार जने थे, मैं, मेरा एक छोटा भाई 2 साल छोटा, मेरी लौकिक माता और लौकिक पिता। तो बाबा से जब ब्रह्मा बाबा से पहले मिले परिवार के तौर पर, तो मेरे पिता को बहुत ज्ञान का उमंग था, बहुत जबरदस्त, और उन दिनों आपको पता हो कि नॉर्थ इंडिया में कोई कोई परिवार होता था, चाहे छोटा ही हो, तो हमारा क्योंकि परिवार था तो हम लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता था, क्योंकि सिंधियों के परिवार से इधर परिवार शुरू हो रहे थे। तो मेरे पिताजी, माताजी और मैं और भाई बाबा से मिले, तो पिताजी ने नेचुरली बहुत जोर से उमंग जाहिर किया कि बाबा मैं तो अब बाबा का बन गया हूं, मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, मैं पूरा सरेंडर होकर सेवा करना चाहता हूं। और उनका ये संस्कार था, बस स्टैंड पे जाएंगे, कोई व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे पर्चा दिए बगैर, ट्रेन में जाएंगे पकड़ पकड़ के। आज भी लोग उनको याद करते, अगर मथुरा में जाओ कि एक बुजुर्ग आया करता था, घर घर जाते, उनको था ऐसा। परंतु बाबा ने कहा, बच्चा तुम्हारा परिवार है, तुमको ट्रस्टी होकर ही चलना है। उसको ये श्रीमत दे दिया। उसके बाद मेरी लौकिक माता को बाबा ने कहा कि तुमको नष्टो मोहा बनना है, इसलिए मेरे पिताजी को मैं इनको कहूंगा कि एक तीर्थ स्थान पे आपको सेंटर खोल दे, वहां आपको रहना है। तो मेरे लौकिक पिता ने मथुरा, जो दिल्ली के पास है, वहां एक सेंटर बनाया। और वो 91 ईयर की एज तक उसने शरीर छोड़ा, कुछ साल पहले वो वहीं पर रही, बाबा ने बिठाया हुआ। अच्छा, तो उसको बाद में ओल्ड भी हो गई, रोग भी आता था, लेकिन हम कहते थे माता जी अब आप आ जाओ हमारे पास आ जाओ, नहीं, बाबा ने बिठाया, एक शक्ति वो उसको अंत तक चलाती रही। मेरी बारी आई तो मेरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा जी मैं लॉ पढ़ता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग ले रहा हूं। ये 1955 की बात है। तो बाबा ने कहा तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। मेरे छोटे भाई की टर्न आई तो बाबा ने उसको पूछा, उसने कहा मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूं कॉलेज में। बाबा ने कहा तुम पढ़ाई छोड़ दो, अब आप देखो। चार व्यक्तियों को चार तरह की राय बाबा ने दी। अब मेरे और मेरे भाई का तो कंट्रास्ट आप देख ही सकते हो। मुझे कहा तो पढ़ाई पूरी कर लो, और उनको कहा तुम पढ़ाई छोड़ दो। अब हम बाद में देखते हैं कि उसके बाद मेरा लौकिक भाई केवल 3 साल शरीर में रहा, केवल 3 साल। और उन दिनों में जो सेवा कोई इम्पोर्टेंट हो सकती थी उस जमाने की, वो उसने की, और 3 साल बाद शरीर छोड़ दिया। अब आप सोचो, अगर बाबा जन्मपत्री नहीं जानता होता तो उसको क्यों कहता पढ़ाई छोड़ दो। अब मुझे कहता पढ़ो, क्योंकि तो उसको पता होगा कि इसकी आयु कुछ ज्यादा है, मैं तो आज भी यहां हूं। तो ये बाबा की एक बात देखने की है। वैसे बाबा लौकिक में कहता था बच्चे बाबा को लौकिक से कुछ नहीं लेना, लेकिन प्रैक्टिकली उसको एक बारी बच्चे को देख ले, उसको सारा उसका आध मध्य अंत पता लग जाता था। जैसे इम्पोर्टेंट कोई डॉक्टर होता है, ये डॉक्टर जी बैठे हैं, किसी का एक ड्रॉप ब्लड देख ले, इनको पता लग जाता है कि शरीर में क्या है, वो आत्मा को देखते थे। तो इस प्रकार का बाबा थे। और उनके साथ कोई रह लिया थोड़ा भी तो उनका उसके साथ इतना स्नेह हो जाता था कि अभी भी बाबा का नाम ले जो बाबा के साथ रहा, एक बात बाबा की सोच ले तो बोल नहीं सकता, गला भर जाएगा, आंसू आ जाएंगे। हम भी बड़ा रोक रोक के बोलते हैं, नहीं तो बीच में आवाज बंद हो जाती है। क्यों? उसका इतना जबरदस्त प्यार। दिनचर्या ऐसी थी कि इतनी नेचुरल और प्यारी दिनचर्या थी कि बाबा मुरली तो चलाते थे, एक रात को क्लास अपने ब्रह्मा बाबा कराते थे, उसके अलावा दिनचर्या में ही बच्चों को खेल खेल में दिनचर्या करते करते वर्ष बीत गए, बाबा ने उनको चेंज कर दिया। हम तो हैरान होते हैं। अभी दिल्ली में कमलमणि दादी है एक, अच्छा विदेश भी हुआ है, 75 साल उसको हो गए हैं। आप उसका कभी भी हम उसको चेयरपर्सन बनाते हैं तो ऐसा शानदार भाषण करती है, इधर उधर नहीं करती, बिल्कुल डायरेक्ट बाबा का ज्ञान बड़े प्यार से, कि 75 वर्ष उसको दुनिया का कुछ पता नहीं, कौन से प्राइम मिनिस्टर आए, कौन से प्रेसिडेंट आए, क्या हुआ, लड़ाई हुई, कुछ पता नहीं। बाबा और मैं आज तक भी, तो ये बाबा की भरी हुई शिक्षा इतनी पावरफुल, दुनिया को देखने का जरूरत ही नहीं है। अब गुलजार दादी को देख लो, गुलजार दादी इतनी अभी भी इतनी इनोसेंट है कि ओआरसी में राष्ट्रपति आई, राष्ट्रपति भारत की, और जब गुलजार दादी ने भाषण किया तो कहा भारत की प्राइम मिनिस्टर आई है। बताओ, सारे उसके ऑफिसर, लेकिन उसका डिवाइन चेहरा किसी ने माइंड नहीं किया कि इतनी इनोसेंट है, जिसको ये भी नहीं पता कि कौन आया हुआ, सामने सामने उससे मिलके आई है। तो ये जो ये इनोसेंस नहीं है, ये बाबा ने कुछ ऐसी ताकत भर रखी है कि बाहर की चीज को तो सोचना ही नहीं। हम लोगों को ये शिक्षा ले, ब्रह्मा बाबा भी, ब्रह्मा बाबा एक लक्ष्य बस, शिव बाबा ने कहा हुआ उसके विदिन विदिन बाबा करेगा। और बाबा की दूरदर्शिता ऐसी थी कि मैं आपको बताऊं, जिस कंपनी में मैं, बाबा ने कहा था तुम इसमें नौकरी कर लो, तो वो कंपनी के 8-10 भारत में ब्रांच थे, बड़ी कंपनी थी, तो नए नए ब्रांच खुलते थे। तो उस समय उसका असम में नाम रूप में एक जगह है, वहां उस कंपनी का ब्रांच खुलना था। तो वो क्या करते थे कि जो पुराने ऑफिसर होते हैं ना पुरानी कंपनियों में अनुभवी, उनको वहां ट्रांसफर कर देते नई में, जरा टिकाए, जैसे हमारे सेंटरों में अनुभवी बहनों को नए सेंटर में भेज देते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वहां आ जाओ, हम थोड़े से पैसा बढ़ा देंगे आपका। मैंने बाबा से पूछा, बाबा बोले बच्चा वहां पर नहीं जाना, वहां 9 महीने बारिश होती है, बहुत मच्छर होता है, हैं? वहां नहीं जाना, यहीं रहो। अच्छा, तो मैंने कहा आप तो कहते हैं कि सेंटर नए नए खोलने हैं। हाँ हाँ खोलने हैं। फिर मेरे को बताया तुम्हारे शहर में नदी है, नहर है, शहर जैसा भी है, गांव जैसा। बाबा मेरे शहर में कभी आया नहीं, लेकिन ऐसा वर्णन किया जैसे वहां हो। अच्छा, मम्मा आई थी एक बारी, तो वो बाबा की दूरदर्शिता ऐसी है। 17 साल मुझे उस बाबा ने कहा जॉब करो, 17 साल किया, एक ही जगह किया। बाबा कहते बाबा बाहर जाता है कोई, तुम क्यों जाता है, ठीक है। तो इस तरह की फोकस्ड बाबा था, उसको पता था कहां किसका क्या पार्ट है। जैसे आप मुरली का कोई शब्द बाबा की अव्यक्त की मुरली का चेंज नहीं कर सकते, आप करके देखोगे फर्क पड़ जाएगा। एक बार मुझे बाबा भोग लगता है ना, तो भोग लगा, मोहिनी बहन भोग लगाती थी हमारे पास, तो उसने संदेश भेजा बाबा ने, बच्चे को कहो भोग का कोई दूसरा नाम बताए, भोग है इसका कोई दूसरा नाम बताए। आज तक मैं उसका दूसरा नाम नहीं ढूंढ सका, प्रसाद ये वो, मैंने कई नाम सोचे पर फिट नहीं बैठते। तो ये बाबा का डेप्थ है, इसलिए उन्होंने जो भी कहा हल्का सा कहा, लेकिन उसके अंदर उसकी बात आप मान लो तो बेड़ा पार। आप अपनी अकल थोड़ी लगाओ कि नहीं इसमें ये अच्छा है, तो आपको बाहर जाके बहुत तकलीफ होगी। तो हमने तो ये देखा अपने जीवन में, हम आ गए, अच्छा बाबा ने कह दिया तुम पढ़ाई पूरी कर लो, हमने पढ़ाई पूरी कर ली साल डेढ़ साल में, तो 56 में हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जैसे वकील होते हैं ना, इनकम टैक्स सेल टैक्स की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो दिल्ली में मेरे पिताजी का बहुत इन्फ्लुएंस था, तो दिल्ली का जो बेस्ट बिजनेस एरिया है सदर बाजार कहते हैं उसको, वहां हमने एक होटल में प्रैक्टिस शुरू कर दिया। 8 महीने हुए होंगे, फिर मधुबन आए, तो बाबा वैसे तो कहता है बाबा को बच्चों का कोई लौकिक का कुछ नहीं लेना, तो आते ही सीधा ही वो जो जगह है आगे है वहां बाबा ने मेरे से आते ही फर्स्ट क्वेश्चन किया, तुमने इम्तिहान पास कर लिया? तो मैंने बड़े फखर से हाँ बाबा मैंने कर लिया, क्योंकि मेरा इम्तिहान भी बाबा ने पास करवाया था। वो इतना डिफिकल्ट उन दिनों होता था चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बारी में तो कोई पास करता ही नहीं था। और मैं क्या करता था कि दादी प्रकाशमणि हमारे सेंटर की इंचार्ज थी दिल्ली में, बाबा ने उनको भेजा हुआ था, तो मैंने कहा पढ़ना पुढ़ना तो जितना पढ़ लिया, तो मैं रोज इम्तिहान देने से पहले दादी से दृष्टि लेके जाता था। बस मैंने कहा पढ़े भागदौड़ करने का क्या फायदा, हो सकता उसका असर हो कुछ हो, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी हम पास होंगे, कोई होता ही नहीं था। 7% उसका रिजल्ट होता था। अच्छा, तो मेरे भाई ने जगाया, भाई तुम्हारा नाम तो आ गया है पास में। अच्छा, तो मैंने कहा बाबा ने मदद की, तो मैंने प्रैक्टिस शुरू कर लिया। तो आए तो बाबा ने पूछा बच्चा क्या किया, तो जैसे कोई बच्चा अपनी कार्रवाई दिखाता ना सीना तान के, मैंने कहा बाबा मैंने पास कर लिया और मैंने दिल्ली के सदर बाजार में ऑफिस खोला है। और पिताजी का बहुत, 21 साल की मेरी एज थी। अब यंग लड़के को काम कम देते हैं लोग, करे अनुभव कर ले, पर कुछ ना कुछ दिया था। तो बाबा ने कहा नजदीक आओ, जैसे मैं यहां बैठा हूं ना खड़ा था, बोले तुमको क्या करना है, दो रोटी खानी है ना। अरे कहा जी। तो बोले तुम काहे को ये झूठ सच का धंधा करता है, उसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, अकाउंट चेंज करना, तुम जाके ना कोई सरकारी नौकरी कर लो। अब एक तो बाबा का अब गीत में आता ना कुंदन जैसा शरीर, चमकता हुआ बॉडी, बुजुर्ग और डायरेक्शन दे रहा है, तो मैंने उसी वक्त फटाफट सोच लिया कि मैं अपने ऑफिस में नहीं जाऊंगा कभी दोबारा। फैसला कर लिया कि आके नौकरी करेंगे। बाबा ने कहा लो जी हम आए, दोबारा ऑफिस में नहीं गए, अपने भाई को कहा जिस जिस के बुक्स है वापस कर दो, थोड़ा फर्नीचर था, एक रजौरी गार्डन सेंटर खुला था वहां भेज दो। फर्स्ट टाइम हमने अखबार में देखा नौकरियां कहां होती है क्या होती है। तो जो नौकरी पहली पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट की दिखी, उसमें मैंने हाथ से एप्लीकेशन लिख के भेज दिया। मुझे ये भी पता नहीं था टाइप कराना होता, आजकल तो कंप्यूटर है, टाइप जरूर कराते हैं। अब पीछे बाबा की शक्ति थी, मुझे इंटरव्यू भी आ गया। अच्छा, दिल्ली से बाहर हम कभी गए नहीं, तो भाखड़ा नंगल डैम है एक बहुत बड़ा, वहां वो कंपनी खोलनी थी, हम चले गए। तो उस ट्रेन में 8 कैंडिडेट उसी डब्बे में उसी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे दिल्ली से। अच्छा, उनको बहुत सारे चाहिए थे, बड़ी कंपनी थी, लेकिन वो आपस में फटाफट बात कर रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। मैं कोने में दुबका हुआ ऐसे बैठा हूं, क्योंकि मैंने तो कभी नौकरी शौकरी ये वो पता ही नहीं कुछ। अब बाबा ने कहा जाओ, मैं उनकी बातें सुन रहा था। तो मैंने सोचा इस इंटरव्यू में इतने ये लड़के होशियार हैं, मैं तो इसमें सफल होने वाला नहीं हूं, मन में मैंने सोच लिया पक्का। मैं देख रहा था, हमें तो अंग्रेजी भी बोलनी नहीं आई, पंजाबी तरह की अंग्रेजी बोलते हम। अच्छा, वहां पहुंचे तो जी हमने पूछा भी इंटरव्यू का, बोले जी उन्होंने तो अभी 300 एकड़ जमीन लिया है, उनका ऑफिस एक सामने दुकानों में है, चले गए। अब मुझे नहीं पता उन लड़कों के साथ क्या हुआ, पर जब मेरा टर्न आया तो उन्होंने मुझे 5 क्वेश्चन पूछे जो अकाउंटेंसी के होते हैं। हम तो भूल भाल गए थे, अब बीके लोग तो ध्यान छुट्टी हुई उसके बाद कौन पढ़ता है, और प्रैक्टिस भी करते रहे थे, तो 5 क्वेश्चन का आंसर मैं दे नहीं सका, और वो सारा बोर्ड 5 बार ऐसे ऐसे किया। मुझे पहले ही पता था कि ये इस तरह के, 6 क्वेश्चन उन्होंने पूछा आप क्या तनख्वाह लेंगे। अच्छा, मुझे पता ही नहीं पे स्केल क्या होता है, इंक्रीमेंट कुछ पता ही नहीं, इंक्रीमेंट क्या होता है। तो मैंने कहा जी जो आप दे देंगे ना, मुझे था नौकरी जो करनी है बाबा, मैंने कहा जी जो आप दे देंगे। अच्छा, और इस कारण से उन्होंने मुझे रख लिया, क्यों कि उनका कंपनी गवर्नमेंट की थी बहुत बड़ी, उनका लॉ था कि यंग लड़के रखने हैं और मिनिमम ऑफ सैलरी पे रखने हैं, तो मुझे रख लिया, बाकी किसी को नहीं रखा। अब मैं बहुत हैरान हुआ कि मुझे तो रख लिया, बाकियों को क्यों नहीं रखा। मैंने जिस दिन वो कंपनी ज्वाइन की मैंने पूछा, तो बोले जी ये लड़के कोई तो सर्विस ऑलरेडी कर रहे थे दिल्ली में, और उन्होंने सोचा इतने जंगल में कौन जाएगा है दिल्ली छोड़कर, तो आप ही ज्यादा तनख्वाह देंगे, तो हर एक ने ज्यादा ज्यादा तनख्वाह मांगी थी, और उनका नियम नहीं था इसलिए उन्होंने उनको नहीं रखा, मुझे रख लिया। अच्छा, अब देखो उनको चाहिए थे 8 या 9, मैं तो को रख लिया, तो उन्होंने 1 महीने बाद दोबारा विज्ञापन दिया और तनख्वाह 1.5 गुना करके, ताकि वो मिनिमम हो जाए। हैं, तो दोबारा और लड़के आए, पर मेरी डेढ़ गुना हो गई क्योंकि मैं तो ऑलरेडी अंदर था, जो तनख्वाह बनेगी मुझे देंगे, तो तनख्वाह भी डेढ़ गुना हो गई, अंदर भी आ गए। अगर पहले डेढ़ गुना होती तो हम बाहर होते। आप सोचो किसने नौकरी दिलवाई, आप सोच सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से थ्रू आउट अब क्या हुआ, पहली तनख्वाह मिली तो हम भारत में आपको पता है कि लोग अपने गुरु को भेज देते हैं पहली सैलरी। तो मैंने अपनी कंपनी में बैंक था जैसे आपके यहाँ है, तनख्वाह का ड्राफ्ट बनाया और बाबा को भेज दिया रजिस्ट्री करा के। बाबा ने रजिस्ट्री करा के वापस कर दिया। आप बताओ तो आप सोचो कोई 21 साल का लड़का हो और उसको कोई धार्मिक संस्था उसका पैसा वापस कर दे तो उसके दिल पे कितना असर होगा। भाई ऐसी भी कोई दुनिया में हमने तो कोई संस्था देखी नहीं। अच्छा, और वापस कर दिया और मैं मुरलियां रोज पढ़ता था तो मैंने मुरलियों की पॉइंट लिखा के एक लेटर लिखा बाबा को कि आप कहते हो मैं तो सराफ हूँ, मैं तो जुहारी हूँ, मैं तो देखकर किसी का पैसा लेता हूँ, मेरे हाथ में है सफल कराओ या ना कराओ, तो आप क्या मेरा पैसा सफल नहीं करना चाहते, आपने ही तो कहा था झूठ सच का छोड़कर नौकरी करो, तो उसका ये पैसा है। तो ऐसे ऐसे मैंने 10-12 पॉइंट लिख के फिर रजिस्ट्री करा दिया। अच्छा, तो बाबा ने फिर लिखा कि पत्थर पाया हर्षाया, इस बारी बाबा रख लेता आगे से नहीं भेजना। अच्छा, आगे तुम अपनी सेवा में लगाओ जो मर्जी करो। तो इतना शुरू से ही ना बाबा का भी फेथ हो गया, हमारा भी हो गया। अच्छा, ऐसे बहुत सारी चीजें। अच्छा, फिर हम वहां सेवा करते थे, पैसा वैसा खरीदते थे, फिर भी पैसा बच जाता था क्योंकि बीके लोगों का पैसा। तो फिर मैंने बाबा से पूछा इसको कहाँ रखे, तो बैंक में तो थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी। मैंने कहा बाबा मेरे ऑफिस में एक आदमी है, उसका भाई शेयर्स में पैसे रखता है, ऐसे ऐसे रख दूं। तो बाबा ने कहा रख दो। उन दिनों एक बहुत बड़ी कंपनी निकली थी, जयंती शिपिंग कंपनी, बहुत बड़ी, और वो नेहरू जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उसके साथ उसकी युगल थे, वो उनका वास्ता था। उन्होंने प्लान ये दिया था कि हम समुन्द्र के जहाज बनाएंगे जापान से और इंस्टॉलमेंट पे बनाएंगे। बहुत सारा अनाज भारत का अमेरिका से आता था, वो शिप्स में आता था, जितना उसका किराया देते उसमें हमारे जहाज बन जाएंगे। बहुत बढ़िया कंपनी, इतना बड़ा उसका प्रोस्पेक्टस, अरबों रुपए की। तो उसमें मेरे उस भाई ने पैसे रखवा दिए, तो मैंने बाबा को बता दिया। अब था वो फ्रॉड, वो आदमी था ना धोखेबाज था, तो उसने कुछ पैसा वैसा खा लिया, वो कंपनी फेल हो गई। पर मेरे को उसके फेल होने से पहले उस भाई ने कह दिया था आप इससे पैसे निकाल लो, मैंने निकाल लिए। परंतु जब मैं अगली बारी बाबा के पास गया तो बाबा ने मुझे कहा बच्चा वो तुम्हारा पैसा, बाबा भी न्यूज़पेपर पढ़ता था, वो पैसा तुम्हारा वो कंपनी में था ना। तो मैंने कहा बाबा मैंने निकाल लिया। तो इतना उसको ये था, इस तरह से। तो हर बात में गाइड करता था, कोई भी बात हो जाए, सैकड़ों बातें थी। और मधुबन में भी हम आते थे, पेरेंट्स के साथ भी आते थे। तो बाबा का जैसे एक बार ये बाबा का अभी भी ये कहना है कि कोई भी बच्चा मेरा सारी जिंदगी में एक बार किसी इम्पोर्टेंट बात पर बाबा की श्रीमत मान ले तो बाबा उसका बंधा हुआ है उसकी लाइफ लॉन्ग ध्यान रखने का, ये हमारा तजुर्बा है। अच्छा, अब हम आपको बताएं कि जब हम मधुबन उन दिनों में आते थे तो थोड़े लोग होते थे, मेरा ख्याल जितना ये हॉल है ना इतने ही होते थे शुरू में। अच्छा, तो बाबा से मिलते थे आराम से कमरे में बैठ के, और हफ्ता भर रहा जाता था, परिवार आए, एक दिन बाबा के साथ भोजन करने को भी मिलता था साथ। बाबा मम्मा, तो हमारा तो परिवार था तो हमको भोजन करना था बाबा के साथ। अच्छा, तो भोजन शुरू हुआ तो मेरी लौकिक माँ को पता था कि मैं आम बहुत शौक से खाता हूँ, तो उन दिनों आम का सीजन था तो आम वो टेबल पर रखे हुए थे, सबको आम दिया गया। तो मेरी माता ने टेबल के नीचे से बहुत चुपके से माँ तो माँ होती है, ग्यारह में भी थी, बहुत नीचे से हल्के ढंग से अपना आप मेरी तरफ खिसका दिया। अच्छा, मैंने भी नीचे से मैं डरता डरता बाबा देख रहा पकड़ लिया, तो मैंने तो सोचा बाबा ने नहीं देखा होगा, बिल्कुल ऐसे ढंग से किया, और कोई होता तो। अच्छा, भोजन पूरा हो गया तो जो बाबा की ब्राह्मणी थी ना लच्छू, तो बाबा ने कहा लच्छू एक बास्केट में ना आम लाओ। तो अपनी टोकरी भर के आम ले आई, तो मुझे कहा लो बच्चा ले जाओ खाना है, आम खाना। तो मैं समझ गया बाबा ने उसको देख लिया है इस तरह से। अब बाबा ने और कुछ नहीं कहा, बस लो बच्चा खा। इतना ही शिक्षा काफी था कि बाबा से कुछ छुपता नहीं, इतने ढंग से उसने दिया था किसी को पता नहीं लग सकता। तो बाबा ऐसा था, प्यार से और कुछ नहीं कहा। अच्छा, फिर बाबा हर डिफिकल्ट चीज कोई भी हो ना उसको आसान करता था अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए। क्या बाबा को थोड़ी डायबिटीज थी, तो करेले का जूस सुबह बाबा पीता था। मुझे क्या पता डायबिटीज क्या होती है, जूस क्या होता है। तो मैं ऐसे गुजर रहा था तो बाबा एक गिलास लेकर, जैसे कोई स्वाद लेकर पीता ना चीज, वाह ऐसे है? तो पी रहा था, तो मैंने सोचा कोई बढ़िया चीज पी रहा होगा बाबा। तो मैंने पास चला गया, मैंने कहा बाबा आप क्या पी रहे हो। बाबा ने कहा तुमने लेना है। अच्छा, वो आधा गिलास मुझे दे दिया। अच्छा, अब मैंने पिया, वो तो कुनीन जैसा कड़वा, आजकल तो मैं पी लेता हूँ पर उस वक्त है। मैंने कहा ये अब क्या करूं, बाबा ने दिया ना तो उसको फेंक सकता हूँ, अब पीना मुश्किल। अच्छा, पर चांस वहां से मम्मा गुजरी, मम्मा ने मेरी तरफ देखा तो बोला क्या बात है। तो मैंने कहा जी ये बात है। मम्मा ने कहा अच्छा तुम छोड़ दो, तब मैं उससे बचा। तो आप किसी को नहीं पता कि बाबा ये जूस पी रहा है करेले का, लेकिन अपने लिए भी आसान करके कि ऐसा ना लगे मैं कोई कड़वी चीज पी रहा हूं, ये बाबा का स्टाइल था। और इतना शिक्षा ऐसे घुमाव फिरा के बाबा देता था जो आपको पता ना लगे, शिक्षा दे देता था। हमारे दिल्ली में एक ऑलराउंडर दादी रहती थी, वो गुलजार बहन की मदर है। अच्छा, तो वहां से हम लोग यज्ञ में फल चीजें भेजते थे, तो उन दिनों संतरा जो था आउट ऑफ सीजन था, तो आउट ऑफ सीजन संतरा वो रखते हैं कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, बाहर से बड़ा सुंदर लगता है, उसका छिलका चमकीला लगेगा पका हुआ, तो अंदर से गड़बड़ होता है। तो ऑलराउंडर जी ने वो खरीद करके एक बक्सा बना के भेज दिया, तो एक संतरा छीला जब वहां यज्ञ में आके, तो अंदर नीला नीला होता ना लगा हुआ सारा होता, तो बाबा ने उसको फेंका नहीं, उसको बकायदा पार्सल करा के फिर उसको वापस भेज दिया। बाबा का शिक्षा देने का ये तरीका था, आके एक तो यज्ञ के लिए तुम पैसा खर्च के इतनी महंगी चीज ले रही हो, उन दिनों तो पैसा भी कम होता था ना, और वो भी तुमने देखा नहीं और आउट ऑफ सीजन ले रहे, तो उसको फिर उसने सारी स्टोरी सुनाई कि बाबा मुझे इसी तरह शिक्षा देता था। कि बहुत सारी उसकी स्टोरीज हैं, नीचे से अनाज खरीदती थी, नाम ही उसका ऑलराउंडर था, सब काम सिखाए थे कि अनाज की बोरी में सुआ मार के देखा करो बीच में, नहीं तो ऊपर ऊपर अच्छा भर देते अंदर खराब होता है। वो भी एक बार खराब खरीद लिया था उसने, तो बाबा का शिक्षा देने का परफेक्ट तरीका था। और बच्चों के लिए बाबा कुछ भी कर सकता था, बच्चे को खुश रखना है, बच्चा संतुष्ट रहे। आपको पता है यहाँ अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों जैसा भोजन मद्रासी आते हैं, बाबा इसमें टाइट नहीं करता था। लोग समझते हैं जी ज्ञान है, हमको कहते हैं कि जी ये क्या, ये कोई आपका कंट्रोल है, तो बाबा क्या कहता था कि तुमको ज्ञान में ठीक रहो, उल्टा सुलटा भोजन खा लो, जैसे होता ना गुरुद्वारे जाओ धरती पर पटड़ी बिछा देते हैं, करोड़पति भी वही खाए, वो भावना से खा लेते हैं, लेकिन रोज के उनका सिस्टम नहीं, तो बाबा बिगाड़ता नहीं, उसी सिस्टम से चलाता था। मेन बात फोकस ये करना है, उससे बाबा कभी नहीं हिलता था, बच्चों को खुश करेगा। अब हम क्या करते थे, शाम को बाबा के साथ जाते थे, सुबह शाम बहुत बढ़िया दिनचर्या होती थी, क्लास हो गई, क्लास में तो शिव बाबा आएगा, ब्रह्मा बाबा आएगा, उसके बाद साथ के कमरे में, उसको चैम्बर कहते थे, उसमें बच्चे आसपास बैठ जाते थे इनफॉर्मल, किसी ने पूछना, बाबा खुद भी बोलता था आशी बाबा ये कह गया। अच्छा, उसके बाद मम्मा सीटी बजाती थी, जो होती ना रबर कॉर्क वाली विसल, तो हम सब लोग बाहर आ जाते थे, सब फ्लीट बूट पहन लेते थे और सबको सैर करा, सुबह जाते थे। अच्छा, फिर बाबा पीछे मुड़ के देखता भी रहता था, बच्चे शिव बाबा याद है, कुछ क्रिश्चियन नंस होती थी उस वक्त माउंट आबू में, इतनी आबादी तो थी नहीं, तो वो भी जाती थी। बाबा कहता था देखो नन कितना चुपचाप जा रही है, नन बट वन, बाबा ने तब से निकाला हुआ है कि उसको याद करती। फिर हर एक को भाग्य होता था बाबा का उंगली पकड़ ले, थोड़ी देर बाबा के साथ चले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो भी सबको बहुत खुशी होती थी। कोई माताएं गीत भी गाना शुरू कर देती थी। इसी तरह शाम को प्रायः बाबा पहाड़ियों पर ले जाता था, छोटी छोटी बकरियों की, जानवरों की पगडंडी होगी, मोस्ट डिफिकल्ट पर रोज अलग अलग ले जाता था, कभी कहीं कभी पत्थर हिला तो आप गए, पर बाबा सबसे आगे जाता था। कहता था शिव बाबा को याद करके चलो कुछ नहीं होगा, हम भी बाबा बाबा करते, किसी को कभी कुछ नहीं हुआ, सांप बाप भी होते थे, लेकिन पहले खुद करता था कि बाबा कर रहा है तो फिर क्या फिक्र है, फिर कभी कहीं ले जाएगा वो सब भाई लोग, केतली बेतली वहीं लाएंगे, चाहे कोई गीत गाएगा। फिर शाम को बाबा नक्की लेक पर एक टेम्पल है, कोई टेम्पल है, आजकल तो वहां भीड़ भाड़ हो गई है, किश्तियां खड़ी, वहां टेम्पल के आगे बहुत अच्छी ग्राउंड थी, सब बच्चों को बाबा वहां बिठा लेते थे और उस टेम्पल के पुजारी को भी ले आते थे, बुला लेते थे, वो भी बड़ी रिस्पेक्ट फील करता था, साथ बैठ जाता था। फिर कोई बच्चा गीत गाता था, कोई कविता, बाबा ज्ञान के बगैर तो कुछ करता ही नहीं था, तो वो कभी तो बाबा सुन लेता था पूरी, कभी रोक देता था, अरे इसमें क्या रखा है बच्चे, हैं ये कोई कमाई थोड़ी है, ऐसे तो हल्का रीति से कोई बच्चा कुछ सुना रहा है, तो बिल्कुल लाइट रख के हर बच्चों को चलाता था। शिक्षा का ये हाल है, पहले तो मैं बताता हूं बाबा का बच्चों से प्यार कितना है। हम लोग भोजन के बाद बाबा हमको बहलाने के लिए एक ताश खेलते थे, हमारे साथ पांच छह जने होते थे और मुझे ताश खेलना नहीं आता था, तो पहले पहले जब मुझे बुलाया तो मुझे बोला तुमको ताश खेलना आता, मैंने कहा नहीं, बोला तुम क्लब में नहीं जाते, हमारी कंपनी है, मैं क्लब भी था, मैंने कहा जी मैं तो सिर्फ एक दो साल में दो बार उसकी ऑडिट करने जाता हूँ, उसका स्टॉक शुक मैं नहीं जाता, मैंने क्या करना क्लब में जाके। बाबा बोला तुम बुद्धू है, तुमको ताश नहीं खेलना आता। अच्छा, फिर मुझे सिखाया, जो सिंपल सा एक ही खेल खेलता था सिखाया। अब हमने देखा यही कमरा बाबा का जो आज है, यही पलंग, ये नीचे की गद्दी, अभी उसको डबल किया, नहीं तो आधे में होता था, आधे में फल रखते थे, वो भी बाबा रोज चेक करता था कौन सा फल पक गया, इसको बांट दो। तो बाबा अपने बेटे को, जो नारायण बेटा है ना, उसका यहां भी आता है प्यार, वो भी आता था प्यार, उसको बाबा बैठाता था परे और हम लोगों को बैठाता था अपने साथ गद्दी पर। हम बड़े खुश होते थे, देखो बाबा ऐसे कर रहा है, उसको भी प्यार करता था। अच्छा, हमें आदत पड़ गई थी कि बाबा के साथ खेलना है, और बाबा कभी किसी को जीतने नहीं देता था, वो खुद ही जीतता था, और जब जीतता था फिर हमसे ऐसे करवाता था। अच्छा, हम उसमें भी खुश होते थे कि बाबा करवा रहा है, हमको आदत पड़ गई थी जैसे किसी को रोज। अच्छा, एक दिन हुआ बाबा ने बुलाया नहीं, तो मैं तो भोजन के बाद बाबा के कमरे के बाद घूम रहा था, बाबा ने बुलाया नहीं, तो लच्छू बहन बाहर आई, तो मैंने कहा लच्छू बहन बाबा ने बुलाया नहीं है, कहती अच्छा मैं पूछ के आती हूँ। उसने कहा, बाबा कहते ले आओ अपने साथियों को, हम चले गए। उस दिन बाबा कंबल लेकर ना थोड़ा टेढ़ा बैठा हुआ था, जैसे होता ना चिट्ठी लिखने में फोटो है, सीधा नहीं बैठा था, आपको पता है कि बाबा हमेशा सीधा बैठता था, और ऐनक कूनक बाबा ने कभी लगाई नहीं है ना, मुरलियों में भी आता है और ऐसे नशे में बैठता था, लक्ष्मी नारायण को देखता रहता था, उसका जहां बाबा की चित्र है वहां लक्ष्मी नारायण का होता था, जहां बाबा की ट्रांसलाइट। अच्छा, हमने खेलना शुरू किया, बाबा हार गया पहली बारी। अच्छा, हमने सोचा अंदर से हम बड़े खुश के बाबा को ऐसे कराए ना कराए हैं, पर अंदर से खुश। फिर हमने सोचा बाबा हारा क्यों, बाबा तो कभी हारता नहीं, कभी नहीं हारा, वो शाम को भी वो ऐसे खेलता था, سب جنے ایک طرف بابا ایک طرف، لیکن اس کا بابا کا نا امنگ تو چائے کا کپ بھی بھرے گا تو لو بچے، ایسے سیدھا سیدھا نہیں. تو ہاں پھر میں نے لچھو سے پوچھا، تو کہتی ہے اس کو بخار ہے بابا کو، تم کو پتا اس کو فیور ہے، تم نے کہا اس لیے بابا نے بلا لیا خوش کرنے کے لیے. تو آپ سوچو اس طرح سے ہر ایک کے اندر نا وہ ایک بات یاد آ جائے، اب بول نہیں سکتے. اچھا اسی طرح سے شکشا کیسے دیتا تھا، بڑے پیار سے، کبھی کسی کو ڈانٹا ڈھونڈنے کا تو سوال ہی نہیں، مرلیوں میں آتا ہے، بڑے پیار سے یکتی سے، اس کو پتا بھی نہیں لگے گا اور وہ خوش ہوگا کہ مجھے بابا نے شکشا دی. مثال کے طور پہ میرے لوکک پتا، آخر انہوں نے شریر چھوڑ دیا. اب شریر چھوڑ دیا، وہ بھی آفس جانے والے تھے، میں بھی آفس جانے والا تھا، تو ان کے ڈریس مجھے بالکل فٹ تھے، تو ان کے 30 ڈریس تھے. تو میں نے سوچا براہمنوں کو لوگ دان دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، تو میں تو خود ہی براہمن ہوں، میں نے رکھ لیے 30 ڈریس ہیں، کام آ جائیں گے. اچھا فٹ تھے بالکل. اب جب ہم ابو میں آتے ہیں، آپ کو پتا ہے لوکی کوئی آفس والا آتا ہے وہاں سے تو اپنی لوکی ڈریس میں آتے ہیں، پینٹ پنٹ پہن کے. یہاں آ کے پھر ہم لوگ جتنے دن رہنا ہو کرتا پاجامہ وغیرہ پہنتے ہیں، یہاں تو اچھا ہی نہیں لگتا. لاسٹ دن جب پھر جانا ہو تب اتنا ٹریول کرنا ہے، پھر ہم آفس کی ڈریس پہن لیتے ہیں. تو لاسٹ دن ایک بار بابا سے ملنے، بدائی لینے کے لیے میں نے جانا تھا، تو میں نے اپنے لوکک پتا کا ڈریس پہنا ہوا تھا، بالکل فٹ تھا، گیا. وہ بابا ان دنوں میں کیا کرتے تھے، ان دنوں کے ودیش میں سینٹر تو تھا نہیں، لیکن بہت سارے سندھی لوگ فیملیز والے وہ یگ میں سنیہ سے آتے تھے، ہانگ کانگ وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھارت میں ان دنوں ریڈی میڈ ڈریس کا رواج نہیں ہوتا تھا، جیسے آج کل مل جاتا ہے نا. تو وہ بابا ان دنوں ریڈی میڈ کوئی ڈریس آتا تھا، ودیشی دے جاتے تھے، تو جو کوئی نوکری کرتے ہیں نا بچے ان کو دے دیتے تھے، ان کے کام آ جائے گی. تو ہر بار مجھے کچھ نہ کچھ ودیش کا دیتے تھے. وہ اتنا میرے پاس ایسا ہو گیا تھا کہ میرے کو اپنی کمپنی میں بیسٹ ڈریسڈ آفیسر کہتے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں کوئی جاپان کی سوٹ آ رہا ہے رنگ برنگا کوئی کچھ، اور انڈیا میں تو ملتے ہی نہیں تھے. اب ان کو کیا پتا اس کو کہاں سے آتے ہیں. تو آفیسر میرے سے پوچھتے تھے کہ تم نے کہاں سے لیا ہے، تو میں ان کو چھیڑنے کے لیے، ایک گاؤں تھا پاس میں، میں نے کہا وہاں سے لیا ہے. اچھا تو اس بار بھی ایک ایسا ڈریس رکھا ہوا تھا، تو بابا بولے ودائی کے وقت بچے یہ تمہارے لیے ہے. تو اپنی میں نے کاروائی دکھانے کے لیے کہ میں نے پتا جی کے ڈریس رکھے ہوئے ہیں، آدھی آدھی سیونگ کر رہا ہوں. تو میں نے کہا بابا آپ کو پتا ہے نا میرے پتا جی نے شریر چھوڑا ہے، تو ان کے 30 ڈریس تھے، میں نے رکھ لیے، دیکھو مجھے کتنا فٹ ہے. بابا کو میں نے دکھایا. تو بابا بولے بچے لوکک باپ کا پہنے گا لوکک باپ یاد آئے گا، بابا کا پہنے گا بابا یاد آئے گا. بابا کا اس طریقہ یہ تھا. تو میں نے سوچا یہ تو سچ، میں تو وہ لے لیا بابا کا ڈریس نارملی بھی گھر میں. میں نے سوچا جب بھی میں اس کو پہنتا ہوں تو یہ تو ایک سنکلپ تو ضرور آتا ہے یہ لوکک باپ کا، اور پہنے ہوئے بھی آتا تو ہے. تو میں نے سوچا یہ تو بات ٹھیک ہے، بابا کہتا ہے گفٹ بھی نہ لو، اور بھکتی میں بھی ہمیں کوئی سڑک پہ بٹوا مل جائے تو ہم مندر میں ڈال آتے تھے، بھی اپنا نہیں ہے چیز. تو اگلی بار میں 30 کے 30 ڈریس بنڈل بنا کے میں یگ میں آ کے دے دیے. میں نے کہا یہاں تو سواہ ہو جائے گا، میرا تو نہیں چلے گا. اب یگ میں کون پہنتا ہے، یہاں جو جتنے بھائی بہن تو کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، وہ بوشرٹیں کہاں پہنتے ہیں، تو انہوں نے بانٹ دیے ہوں گے. اچھا اگلی بار پھر میں جب آیا تو دبی گھاٹ پہ ایک بھائی تھا، پنجاب کا ہی تھا، وہ میرے پتا جی کی بوشرٹ پیلی پہن کے کپڑے دھو رہا تھا. اچھا تو میں نے کہا او دیکھو میرے پتا جی کی بوشرٹ. تب بھی مجھے سنکلپ آیا، تو میں نے کہا کہ اگر چھوڑنے کے بعد سہا کرنے کے بعد بھی مجھے سنکلپ آ سکتا ہے तो अगर मैं पहनता तो कितना मेरा संकल्प जाता। तो बाबा का ये सबको मैंने चिट्ठी लिखवाएंगी टीचर आके, बाबा दो चार नाम बाबा को पता होते थे, इसका भी नाम लिख दो, ये भी अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा लिख देता था। फिर बाबा कहता था खुश रहो आबाद रहो न बिसरो न याद रहो। बाबा इनको याद करे या शिव बाबा को याद करे, ऐसा था। तो बिल्कुल ये मामला, तो इसलिए इस तरह से शिक्षा देता था। और हमको एक बार घुस गई अंदर शिक्षा, तो फिर पक्का रहता था कि भाई ये तो कहा है, इसका बहुत डीप रिजल्ट है। तो इस तरह से काम चलता रहा। तो उसके बाद भी हमने ये फील किया है कि हर चीज में बाबा का प्रोटेक्शन पूरा, और एडवांस में कोई गलती होने वाली हो एडवांस में टचिंग भी बाबा देता, ऐसे मत करो ऐसे मत करो। और हमने वो जो बाबा के इस टाइम की धारणा कर ली, वो धारणा अब तक काम आती है। आखिरकार क्या हुआ, हमने नौकरी छोड़ी, वो भी बाबा के बहनों के कहने से छोड़ी। उसकी डिटेल है लंबी चौड़ी, कहो तो वो भी सुना दूं, इंटरेस्टिंग है। अच्छा तो अच्छा, नौकरी के बीच में भी देखो, अब हम बाबा ने कहा था कि बच्चा तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो 17 साल हम एक ही जगह रहे। अब बीच में कभी कभी अपनी ही कंपनी में, क्योंकि सारी कंपनियां थी 6-7, अगली पोस्ट का इंटरव्यू आता था, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, आपने और कहीं नहीं जाना। और बीके लोगों का क्या काम बढ़िया करेंगे, इधर और चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप हैरान होंगे, मैंने 17 साल नौकरी की है, 13 साल में फैक्ट्री के अंदर नहीं गया। कोई ऐसा आदमी होगा कि आप 17 साल नौकरी करिए, 13 साल आप उसके अंदर ही नहीं गए, आपको पता ही नहीं क्या होता है। क्यों? हमारा ऑफिस बाहर था, हम एडमिनिस्ट्रेटिव थे, ऑफिस में थे, जहां ये और काम होता, हम क्यों जाएं? नहीं तो कोई सोचता मेरी कंपनी है, मैं जाऊं, मैं नहीं गया। और फिर एक जरूरत पड़ी, कुछ काम था उसके लिए मैं गया, फिर मैं जाने लगा। तो सख्त था, इसीलिए तो बाबा क्या करते थे कि बचाते थे। फिर तो एक बार हमारा इंटरव्यू हुआ दिल्ली में, और कंपनियों के भी आए, हम भी गए, काम हमारा बढ़िया था पर इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। तो आ गए, पक्का पता था कि अब इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, मेरे से नीचे वाला मेरा ऑफिसर बन जाएगा। और मेरे को ख्याल आया, तो दिल्ली में हमारा घर था, आया लौकिक पिता ने कहा भोजन करो, तो मैंने कहा नहीं, मैं भोजन नहीं करना। क्यों नहीं करना? मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं। अरे अरे बाबा बैठा है, तुमको क्या? मैंने कहा बाबा तो बैठा है, पर बाबा का नाम बदनाम थोड़ी मुझे करना है, मेरा पक्का इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, मुझे पता है, इसलिए मेरे को अजीब लग रहा है। अच्छा, आखिर मैं अपने शहर में आ गया और दिन गिनने लगा कि भाई किस दिन वो ऑर्डर आता है और ये सारा प्रॉब्लम मेरे लिए पैदा होता है। तो 5-4 दिन बाद वो ऑर्डर आया। ऑर्डर क्या आया? इंटरव्यू तो वाकई अच्छा नहीं हुआ था, ऑर्डर ये आया कि किसी कमी की वजह से वो जो इंटरव्यू का बोर्ड बना हुआ था, सारा इंटरव्यू कैंसिल किया जाता। अब बताओ है? मैं बच गया। अच्छा, टोटल इंटरव्यू कैंसिल हो गया। और फिर एक और ऑर्डर आया कि टॉप पोस्ट से पहले कभी इंटरव्यू नहीं होगा, और सिर्फ उसके कागज देख के पिछला काम कैसे करता। तो मेरा एंड तक इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर मैं ऐसे जब भी होता था प्रमोशन होता रहा। अच्छा, अब लास्ट की बड़ी मजेदार बात है, तो बाबा ने मुझे तैयार किया, क्योंकि मेरी कोई इच्छा फुल टाइम ऐसे सरेंडर होकर के इसकी नहीं थी। मैं सोचता था दान का पैसा खाएंगे, हैं काहे को, तुमको बाबा ने जॉब दिलाई है बहुत अच्छी, सब साधन है, ऑफिसर है, कार मिली हुई है, और खूब सेवा भी करते थे। कोई आदमी 17 साल एक जगह रहे तो काम वाम का भी कोई पूछता नहीं है, साइन कर दो काम चलता है। और 52 संडे में से 48 संडे तो मैं बाहर ही रहता था, सेवा करता था। मेरे स्टैनो के पास 2 कॉपियां थी, एक सरकारी और एक प्राइवेट, तो सारा काम हमारा चलता था। तो फिर भी बाबा को कुछ मंजूर होगा, तो अव्यक्त बाबा ने फिर कमरे में मिलते थे काफी टाइम, मुझे बुलाया, मेरी टर्न आई तो बोले बच्चा तुमको ये लौकिक और अलौकिक दोनों करना अच्छा लगता है या तुमको अलौकिक अच्छा लगता है? अब मैंने सोच के मैंने कहा बाबा मुझे तो ठीक है, लौकिक और अलौकिक दोनों ही ठीक है मेरे लिए, क्योंकि सारा कुछ साधन है, सेवा भी मैं कर रहा हूं। बाबा ने फिर कहा 19-20 बताओ, 19-20 बताओ, ऐसे सोचकर ये और ये। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा बाबा मेरे लिए तो ठीक है, ऐसे ही ठीक है, फिनिश। उसके बाद बाबा ने कुछ नहीं कहा। फिर 2-3 महीने बाद जब मेरा टर्न आया तो बाबा बोले, फिर बोला तुमने कोई आप समान बनाया है? अच्छा, मैंने सोचा मेरा शरीर छूटने वाला है और मैं जाता हूं पंजाब में सेवा वगैरह करने, तो बाबा कह रहा है कि अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो कौन करेगा। मेरे मन में यह है भगवान कह रहा है। तो फिर बाबा ने आप ही कहा, बच्चे जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। मुझे तसल्ली हुई। फिर बोले कि बात यह है कि कभी तुम ना जा सको कहीं तो आप समान होना चाहिए, इजी रहता है। उसी समय बाबा के सामने बैठे मेरे आगे 2 चेहरे आए भाइयों के, एक अमीर चंद भाई और एक लक्ष्मण भाई, पंजाब के हैं, दोनों मेरे साथ जाते थे। लक्ष्मण भाई जरा गांव की तरफ नेता की तरफ भाषण करते, अमीर चंद जरा रिफाइंड था, छोटा सा लड़का था, कोमल था थोड़ा। अब तो मैंने कहा ठीक है आप समान बनाऊंगा। उसके अगली टर्न तक मैं किसी प्रोग्राम में नहीं गया, कभी उसको कह देता था भाई मेरे को छुट्टी नहीं मिली तुम जाओ, मैं नहीं तुम जाओ। अगली बार आया तो मैं बाबा को कह सकता था मैं आप समान बनाया, तो मैं गया, मैंने बोला बाबा मैंने आप समान बना लिया। अच्छा, फिर बाबा बोले तुम कभी किसी सेंटर में रहे हो? अच्छा, तो मैं 21 दिन के लिए छुट्टी लेकर दिल्ली के करोल बाग में एक बहुत म्यूजियम बनना था, जिसको मुरारजी देसाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऊपर, वो मेरे को शौक था म्यूजियम बनाने का, तो मैं वहां रहा था और ऑलराउंडर दादी थी और मैंने थी। मैंने कहा बाबा मैं तो 21 दिन के लिए रहा हूं सेंटर पर। बाबा बोला नहीं, मेहमान की तरह नहीं, क्योंकि आप ऑफिसर हैं, सेंटर में जाएंगे, फल ले जाएंगे, चीजें ले जाएंगे, आपको मेहमान की तरह ही रखेंगे, इनमेट की तरह जैसे बाकी रहते हैं। फिर बाबा आप ही बोला, मेरे को क्या पता। बाबा बोला बच्चे जब इनमेट की तरह रहते हैं ना तो संस्कार का भाव स्वभाव आता है, संस्कार टकरा, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्यों कह रहा है। अच्छा ठीक है, वो भी पूरा हो गया। उसके बाद दिल्ली का पांडव भवन जो है जहां हम रहते हैं, फर्स्ट बिल्डिंग है जो खरीदी गई, आबू में तो था, वो भी खरीदना पड़ा था क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्किट हाउस में खरीदी गई। उस समय 1973 में केवल 4.25 लाख उसका कीमत था, तो भी सब भाई बहनों ने कहना 4.25 लाख उस वक्त होता ही नहीं था किसी के पास, और खरीदी गई तो दादियां थी, उन्होंने मुझे कहा भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीदी है, हमें एक भाई वहां चाहिए, और तुम्हारा दिल्ली, मेरा कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, तुम अपनी बदली करवा लो। तो मैंने कहा बहन जी, मैंने सोचा कि बहन जी यहां तो एक कंपनी है, 17 साल से मैं हूं, साइन कर देता हूं, अब हेडक्वार्टर में चला गया तो सारी कंपनियों की प्रॉब्लम मेरे पास आएगी, छुट्टी होते हुए भी मैं नहीं ले सकूंगा, उनका ठीक करूंगा। और फिर सेंटर हमारा था करोल बाग में, हेडक्वार्टर हमारा था दूसरी तरफ, मैंने कहा थका थकाया आऊंगा, शाम को स्नान करूंगा, खाना खाऊंगा, सुबह क्लास करूंगा, चले जाऊंगा, तो आपको क्या फायदा होगा। इसलिए अपने ही बाबा ने मेरे से कलवा दिया, आप ही अगर आप चाहती हैं तो 17 साल हो गए, अब मैं छोड़ देता हूं इसको, अपने खुद नहीं दादियों ने कहा। अच्छा, प्यार कर दिया था मुझे गोल मोल करके, अब मैं बाद में सोचता हूं वो क्यों बोला। अच्छा, अब भी क्या हुआ कि मैंने कहती जैसे तुम्हारी मर्जी, तो मैं मधुबन से चला वहां जाके नौकरी रिजाइन करने के लिए कि अभी मैंने अब छोड़ देना। वहां पहुंचा तो घर में डाक आई होती ना चिट्ठियां, तो मेरी कंपनी में अगली पोस्ट के लिए इंटरव्यू, क्योंकि वो टॉप पोस्ट थी, उसके लिए इंटरव्यू होना था, इंटरव्यू लेटर पड़ा था। अब आप सोचो किसी ने कल नौकरी छोड़नी है वो इंटरव्यू क्यों करेगा, चाहे बड़ी पोस्ट हो या छोटी, उसने तो छोड़नी है। फिर भी मैंने सोचा श्री मत ले ले, तो मोहिनी बहन थी, उसको मैंने कहा बहन जी आप ध्यान में जाओ, अब बाबा को बोले इसने कल रिजाइन करना है और ये इंटरव्यू आई है, इंटरव्यू तो नहीं करनी ना इसको, मुझे वो आई संदेशा लेकर बाबा कहता करनी है। मैंने कहा क्यों करनी है बहन जी आप प्लीज एक बार फिर जाके पूछो, उसकी समझ में नहीं आ रहा क्यों करनी है, जब उसने छोड़ने हैं, ये छोड़ा या वो छोड़ा। तो बोले बाबा बोले उसको कहो जब ये छोड़ भी देगा ना तो लोग पूछेंगे इसकी क्या पोस्ट थी, तो अगर बड़ी पोस्ट होगी वो सेवा करेगी। अब ये तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि जब छोड़ दोगे, आप पूछते ना फार्मर आप क्या थे, तो अगर ऊपर वाली पोस्ट होगी उसका भी असर पड़ता। अब बाबा ने कह दिया तो जाना है, मैं चले गया इंटरव्यू, तो दिल्ली में थी, बहुत बड़ा पोस्ट था तो बहुत बड़ा इंटरव्यू बोर्ड था, हमारी चार पांच कंपनियों के जनरल मैनेजर ये वो 10-12 आदमी बैठे थे और पहला मेरा ही नंबर आ गया। तो पहले वाले को तो खूब पूछते हैं, फ्रेश होते हैं वो, तो मेरे को बोले मेरा कागज वागज देखे कि देखिए आप 17 साल एक ही फैक्ट्री में रहे हैं, अब हम अगर आपको पोस्ट देंगे तो आपको चेंज करेंगे। मैंने मेरे को क्या था, मैं तो छोड़ना ही था, मैंने कहा देखो जी ऐसा है हमारे, आपको पता है कि हमारे एरिया में फैक्ट्री में कोई प्राइवेट मकान नहीं है, आपके ही बंगले में ब्रह्मा कुमारी का सेंटर चलता है और वो फिर डिस्टर्ब होगा, इतना ही मैंने कहा, इसलिए मेरे हालात तो वही है। इतने में उसका फोन बजा चेयरमैन का, उसको मिनिस्टर ने बुला लिया, तो बोले कि क्या करना है इंटरव्यू का, बाकी बोले कहता करते रहो मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब जो उन्होंने मेरा इंटरव्यू और ज्यादा लंबा होना था तो सारे रिलैक्स हो गए, वो इंटरव्यू भूल गए। बोले आपकी हॉबी क्या है, बीके की क्या हॉबी होती है भाई है? तो मैंने कहा स्पिरिचुअल स्टडी, और क्या बोलता हूं, उनको तो ज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअल स्टडी। अच्छा एक बोला आपने गीता पढ़ी है, अच्छा मैंने और कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, संस्कृत मुझे आती नहीं, पर हमारे कॉलेज में जब सबको डिग्री दी गई थी तो एक सेठ जी से सबको एक गीता दिलाई गई थी, उसमें हिंदी संस्कृत ट्रांसलेशन था, वो मैंने पढ़ी थी, और ज्ञान में भी गीता का वर्णन मैंने कहा हाँ जी पढ़ी है। अच्छा गीता का इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक बताओ, अब मुझे संस्कृत नहीं आती, अंदर मेरे है कुछ पता है मुझे पर मैं बोलूं कैसे, तो मैंने कहा टू मी मन मना भाव मध्य आजी भाव, जो हमें पता है जो हम बोल सकते टू मी, वो सिर हिलाने लगे ऐसे ऐसे। तो मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है कि जब पता ही नहीं भगवान कौन है तो उसको कैसे याद करेंगे, कृष्ण जी के शरीर को याद करेंगे क्या। फिर उन्होंने सिर हिलाया कि ऐसे बोल रहा है, उनकी समझ में नहीं आया। फिर एक बोला अच्छा ठीक है, सड़क के ऊपर दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक दूसरे को छुरा मारने के लिए जा रहा है, आप देख रहे हैं गीता के अनुसार आप क्या करोगे। अब देखो इंटरव्यू कौन सा, क्वेश्चन कौन सा, गीता भी गई है। अच्छा तो मैंने कहा जी देखो ऐसा है, मैं अपने शरीर की मृत्यु से कोई भय नहीं है, लेकिन मैं लॉ अपने हाथ में नहीं लेता, इसलिए मैं कोई पुलिस वाला ढूंढूंगा। तो फिर उन्होंने ऐसे किया, तो फिर बोले अच्छा जिसको वो मारने जा रहा है आपका सगा भाई है, फिर आप क्या करोगे। मैंने कहा जी ऐसा है कि सगा भाई बना है कर्मों के हिसाब से, तो मेरा उसके लिए कुछ ज्यादा ड्यूटी तो बनती है, मैं देखूंगा मैं क्या करूंगा, बोल बोल जवाब दिया। तो दूसरे ने बोला जी 9 मिनट हो गए अब इनको जाने दो, मैं चला गया सिलेक्ट होके रिजाइन कर दिया। मतलब क्या हुआ, दिलाई भी बाबा ने, रखी भी बाबा ने, छुड़ाई भी बाबा ने, इससे ज्यादा क्या हो सकता। उसके बाद की भी बहुत सारी बाबा, अब तक भी अव्यक्त बाबा जैसे साकार है ऐसे हमको रखता है। एक घटना और बता देता हूं उसके बाद फिनिश। अव्यक्त बाबा के टाइम में मुझे और सब चीज के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस है, कुछ नहीं कोई कह दीवार से निकल सकते हाँ क्योंकि बाबा साहब, लेकिन अपना शरीर इसको कोई रोग आ जाए उसके लिए मैं बहुत कमजोर। बचपन से जब हमारे घर में वो टीका लगाने डॉक्टर आता ना, कॉलरे का टीका है, बरसात में तो मैं भाग जाता था, मुझे पकड़ के ला के मैं रोता था, टीका लगाते थे। अच्छा, केवल बाबा को मैंने देखा था कि बाबा के विश्व इंजेक्शन भी लगा रहा है, बाबा ज्ञान भी सुना रहा है। मैं सोचता था मेरे पर ये दशा आ गई तो मेरा क्या होगा, अंदर से हमेशा सोचता। अच्छा, बहुत डर। अब जो होता है बाबा उससे पार तो कराता है। अच्छा, अब क्या हुआ जी कि मेरे को यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया। पहले तो मैंने किसी को बताया नहीं, पानी पूनी पी लेता था ज्यादा, एक दो बार ही आता, आखिर आना बार बार शुरू हो गया। तो अंकल स्टीव नरेन एक विदेश का है, वो हमारे पास ही रहता था, उसको मैंने, उसकी बेटियों को बताया, वो मैं कंजूस भी हूं, उन्होंने कहा मैं किसी डॉक्टर के आज तक पैसा नहीं खर्चता, उन्होंने कहा हमारा डॉक्टर है एम्बेसी का, हमको दिखाएंगे। दिखाया तो उसने बताया कि दोनों किडनियों में एक में दो स्टोन है और एक में एक है, इसका ऑपरेशन होगा। अब मैं तो सोचने पड़ गया कि भाई टीका लगवाना नहीं, ऑपरेशन। अच्छा, तो मैंने बाबा के कमरे में बैठ के 5-6 प्रश्न, जैसे कोई लिखता है ना, बाबा को किए। पहली बात तो मेरे लौकिक पिता का डेथ भी किडनी स्टोन के ऑपरेशन में हुआ था, तो मैंने बोल लिखा बाबा मेरे पिता का भी डेथ उसमें हुआ है डेथ, और मैं अकेला बेटा हूँ, मेरी माँ को बहुत कष्ट होगा, मेरे में बहुत पावर है, मैं समझता हूँ विनाश तक मैं स्टोन के साथ ही चल सकता हूँ, क्योंकि मुझे कभी पेन नहीं हुआ था किडनी स्टोन का। अच्छा, तो पहला ये लिख दिया। फिर दूसरा मैंने लिखा कि बाबा आप कह भी देते हो किसी को कि ठीक हो जाएगा, पर मैं वो भी डाउट है मुझे। एक बार आपने विश्व किशोर को कहा था तेरा ऑपरेशन ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल, डाइड ऑफ हार्ट अटैक, तो मैंने कहा इसका भी मेरे को अंदर आता है, स्पष्ट मैंने लिखा। फिर तीसरा मैंने लिखा बाबा मेरा दिल बहुत कमजोर है, आप जानते हैं, तो अगर कुछ हो गया तो मेरे में तो ताकत नहीं है। ऐसे करके मैंने 5-4 एक तो मुझे भूल गया, तो बाबा के उत्तर भी उसी तरह स्पष्ट लिखे हुए सामने आए कि बच्चा अगर पिता की डेथ एक बीमारी से हुई है तो जरूरी नहीं है बेटे की भी उसी बीमारी से होगी। फिर उस समय से लेकर अब मेडिकल साइंस बहुत इम्प्रूव हो गई है। फिर बाबा ने कहा अगर तुम्हारा दिल कमजोर है तो मैं साथ हूँ तुम्हारे। अच्छा, अंत में लिखा कि सब ब्राह्मणों को पता लग गया है कि तेरा ऑपरेशन होना है, अगर तुमने नहीं कराया तो सब ब्राह्मण कहेंगे ये वैसे ही ज्ञानी है और प्रैक्टिकल नहीं है। ये बाबा ने बिल्कुल क्लियर आ गया। अच्छा, अब बोलो कराओगे कि नहीं? मैंने कह दिया कराऊंगा, क्या करूं। अच्छा, अब मैंने सोचा कि दिल्ली में कराऊंगा तो सारे आके कहेंगे भाई साहब ये है, कैसे हो वैसे हो, मुझे वो पसंद नहीं। मैंने बॉम्बे में कराता हूँ ताकि कोई आए ही ना है, तो बॉम्बे में एक अस्पताल है जसलोक, मैंने वहां कहा मैं कराता हूँ, और अपनी माँ को भी नहीं ले जाऊंगा, उसको दर्द होगा ऐसे ही, उसको भी यहीं छोड़ जाता हूँ। तो बड़ी दीदी थी, उसने कहा नहीं अपनी माँ को साथ ले जाओ, जो सामने सामने होगा वो ठीक है, यहाँ तो बहुत तड़पेगी, उनको अनुभव है। अच्छा, माँ को भी ले गए। अब जी हम आपको बताएं कि बाबा ने शक्ति कैसे दी, कि जिस दिन हमारा ऑपरेशन था थोड़ा दुआया दुआया देकर अधमरा सा तो कर ही देते हैं बंदे को, तो उस दिन मुझे स्ट्रेचर में ले जाना था ऑपरेशन के लिए, होश था लेकिन शरीर ऐसे होता, तो मेरी माँ मेरे कमरे में ही थी, उसको मिलके अच्छी तरह माता जी हम जा रहे हैं, उसको तो हिम्मत ही देनी थी, हम भी चले। जब लिफ्ट में बैठा, मैं लिफ्ट में रखा उन्होंने तो मेरे उस वक्त का मेरी माता को बुलाओ, ये मेरे अपने प्लान में नहीं था, किसी ने कलवाया। तो माता आ गई तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, जैसे स्टील का हाथ होता ना, जोर से मैंने कहा मेरा दिल पक्का है, आप भी पक्का रखना। अच्छा, अब उसमें बाबा ने मुझे ताकत भरी दिल पक्का करने के लिए, नहीं तो वो तो थी। उसके बाद तो सुन करके ऑपरेशन करते आपको पता भी नहीं लगता। अच्छा, जब हम अपने कमरे में आ गए तो जब मैं गया था निर्वैद जी वहां नहीं थे, दादियों ने भेजा था उनको, जब मैं ऑपरेशन से आया तो वहां थे, पर मुझे नहीं पता था, मैं तो बेहोश था। तो शायद वो ऑपरेशन करते हैं, टांगे ऊंची करके करते हैं, क्या सब कॉन्शियस में मैंने कहा नर्स मेरी टांगे सीधी कर दो। निर्भया जी भी सुनाते नर्स मेरी टांगे सीधी कर दो। एक आध मिनट बाद मैंने कहा नर्स मैंने तुम्हें कहा ना मेरी टांगे सीधी कर दो। अच्छा, तीसरी बारी मैंने कहा निर्भया जी देखो ये टांगे सीधी नहीं करती, इसको कहो मेरी टांगे सीधी कर दो। अब मुझे तो पता नहीं निर्भया जी वहां आ चुके हैं, पर वो थे आए हुए, अब भी वो हंसते वो कहते हैं तुम्हारी टांगे सीधी थी। अच्छा तो समझा, तो मतलब उसमें भी अच्छा। फिर जो बात है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने कहा भाई तुम्हारे ये टांके वंके लगाए हैं, खांसी आएगी क्योंकि तुमने भोजन नहीं किया, इसको खांसो तो पकड़ के करना, टांके टूट जाते हैं, और दूसरे तीसरे दिन का अब आपको डाइट देंगे तो आपको उल्टी आएगी क्योंकि तुम्हारे अंदर एसिड जमा है। बताया उस फ्लोर पे 13 कमरे थे और 13 में ही पेशेंट थे, और कई वो बड़ा जसलोक हॉस्पिटल है, लोग होटल की तरह भी यूज करते हैं, अरब के सेठ आ जाते हैं वहां रहते हैं, मेरा फैट कम कर दो इस तरह के होते हैं, कई चिल्लाते भी हैं किडनी वाले। अच्छा तो जी एक तो मैंने बाबा कैसे करता था, तो वो स्पंज करते हैं ना, तो बाबा खुद किया करता था बॉम्बे के हॉस्पिटल में, मैंने तो मेरे को बोले आपको स्पंज करना है, मैंने कहा नहीं आप लिख दो मैं खुद करूंगा, और मैंने बाबा को याद करके जैसे वो करता था किया। फिर मैंने देखा बाबा ऐसे अपनी नाली पकड़ के चलता था, तो उन्होंने नाली लगाई हुई थी, मैंने पूछा मैं वॉकिंग कर सकता हूँ, हाँ तो मैं नाली पकड़ के वो बाबा को याद करके वॉकिंग भी कर लेता था। अब जब वो उल्टी आने की बात आई तो सचमुच रात को 11 बजे जोर से ऐसे हुआ, तो नर्स अपना पॉट ले आई, यहां तक लाई, आज तक मेरे को उल्टी बहुत कम आती है, पता नहीं क्यों, मैं इम्पोर्ट ही करता हूँ, एक्सपोर्ट कभी होता नहीं नेचुरली, और मुझे उससे घबराहट भी होती है, यहाँ खट्टा खट्टा होता है। तो जब यहां तक ले आई तो मैंने संकल्प किया कि उल्टी नहीं आनी चाहिए, तो मैंने जोर से संकल्प किया, उल्टी नहीं आई, वो नर्स वापस चली गई। जब वहां पहुंची तो 4 गुना पावर से फिर आई जोर से, और यहां तक मुझे महसूस होने लग गया कि अब आएगी। अच्छा वो ले आई, बिल्कुल आने वाली थी, तो मैंने सोचा नहीं, 100 गुना शक्ति से मैंने संकल्प किया नहीं आएगी उल्टी, आज तक नहीं आई। अच्छा समझा आपने, ये मेरा अनुभव है पक्का। तो फिर उसके बाद मशहूर हो गया कि ये व्यक्ति रोता नहीं, ये व्यक्ति चिल्लाता नहीं, तो नर्से और पेशेंट को कहा मैं कमजोर मिलकर और पेशेंट को मेरे कमरे में लाती थी, इसको हिम्मत दो, उसको देते देते मेरी और हो गई। तो इस तरह से बाबा ने ये भी पार करा दिया, समझा आपने। तो मैंने नोट किया कि मेरे बस का नहीं था ये, करवा दी, अब मैंने खुशी से कहो दूसरी करा लो, मैं कराने को तैयार हूं। अच्छा तो इस प्रकार का है। एक और है लास्ट, एक बार नहीं, बाबा बच्चों को गिल्टी कॉन्शियस ना रहे उसकी है। जहां हम जॉब करते थे उस दरिया के पार, इधर दरिया के इस तरफ हमारी फैक्ट्री की आबादी थी, उधर जनरल थी, तो हमने गीता पाठशाला उस तरफ खोली हुई थी, वहां मोहिनी बहन जब मैं भोजन करके जाता था, स्कूटर चलाता था, उसको बिठा करके छोड़ जाता था, और शाम को जब ऑफिस पूरा होता था तो उसको ले आता था, हफ्ते में एक बार या दो बार होता था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी पे भी मिली थी, मेरी जेब में थी, तो हम मोहिनी बहन को छोड़ तो आए थे, आती बार पता नहीं क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल में पड़ा था सीधा ही। अच्छा हॉस्पिटल में पड़ा था, उधर देखा तो मोहिनी बहन भी दूसरे बेड पे हॉस्पिटल में पड़ी है, इतना चेहरा हमारा सूज गया। मेरी कंपनी का एक ऑफिसर मेरे पड़ोस बैठा था, धीरे धीरे बता रहा था, आप जा रहे थे, एक लेडी थी बुढ़िया, आपकी टक्कर हो गई और वो मर गई, हैं, आपको थोड़ा चोट आया है, वो मुझे बता रहा था कैसे यहाँ आया हो। मुझे आज तक नहीं पता वहां क्या हुआ था, पर हम हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर ने बोला 24 घंटे अगर इसका ब्रेन हेमरेज नहीं हो तो बच जाएगा। अब मैंने आपको बताया मैं तो इंजेक्शन से भी डरता हूं, 13 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, खुद मैं डॉक्टर को बुलाता था, डॉक्टर आओ, वो पता नहीं जो भी दवाई दे जाता था। 94 दिन में नॉर्मल हो गया, तो मैंने डॉक्टर को कहा इधर नहीं आना, मुझे दर्द होता है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। 13 दिन जो वो करे वो करता रहे, कहीं रखा हुआ था बाबा ने। और मैंने अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बताया, माता को नहीं बताया, मथुरा में नहीं बताया, लेकिन एक्सीडेंट था तो उर्दू के अखबार में निकल गया। और मेरी मौसी जलंधर में रहती, उसने पढ़ के मेरा नाम लिखा हुआ था, तो मेरी माता को फोन कर दिया मथुरा में कि हॉस्पिटल में है। 14वें दिन हम रिलीज हुए तो मैं घर आ गया था। तो जब मैं सेंटर में आया तो मेरी मदर का फोन आया, तुम हॉस्पिटल में हो? मैंने कहा आपने फोन कहाँ किया है? तो कहती है ना, तो कहती है नहीं, मैंने कहती मैंने सुना है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं। खैर बाद में हमने पता किया वो बुढ़िया कौन थी, वो डेफ एंड डम थी, और सिटी के हॉस्पिटल में उसका कोई रिश्तेदार बीमार था। हमारे पीछे ही होटल था, उसकी माँ थी मालिक की। तो एक बारी तो उसको वो छोड़ाया, अगले दिन उसने कहा माता आप ही चली जा। अब वो जा रही थी, हमने हॉर्न बजाया होगा, कुछ भी किया होगा, उसने सुना नहीं, उसकी डेथ ही हो गई। अब मैं क्यों ये स्टोरी सुना रहा हूं, हमने बाबा को लिखा कि बाबा ऐसे ऐसे हमारे स्कूटर के नीचे आके माता की डेथ हो गई। तो बाबा ने लिखा बच्चे ये तो मच्छरों की तरह है, एक आध मच्छर मर गया कुछ नहीं है, बिल्कुल ख्याल नहीं करो। ये इसलिए बता रहा हूं कि हमको किसी के आगे डेथ हो जाए तो गिल्टी कॉन्शियस तो होगा, हालांकि हमारा कसूर नहीं था। बाद में हमने अपने ऊपर ही इंश्योरेंस क्लेम करके उसको पैसा दिलाया, वो सब ठीक है, लेकिन बाबा का ये वर्ड थे बच्चे ये तो कल जी के मनुष्य मच्छरों की तरह है, कुछ नहीं। तो ताकि व्यक्ति को हिम्मत। ओम शांति। 12:30 हो गए।